بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد. دیکھو، ازدواجی زندگی کے بارے میں باتیں چل رہی تھی، اس میں سے اس کے بعد خاوند کی 10 بڑی غلطیاں کے بارے میں ہوا، اور ابھی بات چل رہی ہے کہ بیوی کے لیے 20 اصول، گولڈن اصول، اس پر بات ہے کہ نیک بیوی کے اندر 4 صفات جس کے اندر ہوگی وہ نیک بیویاں ہوگی. جیسے کل بتایا تھا، پہلی صفت دین کے معاملے میں خاوند کی مدد کرنے والی، دوسری صفت اچھے اخلاق والی، تیسری صفت کہ اپنے شوہر کی بات کو ماننے والی، اور چوتھی صفت اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی. یہ 4 صفت. تو اس کے بعد بات ہوئی تھی کہ بیویوں کے لیے 10-20 اصول ہے، اگر وہ اپنا لے تو گھروں کے اندر محبت آئے گی. ایک کھانے کو ذکر و فکر کے ساتھ پکائے، اس پر بات چل رہی تھی. یہ بہت آسان ہے، اور ہر بیوی کھانا تو پکاتی ہی ہے، لیکن اس کو ذکر و فکر کے ساتھ پکائے گی تو اس کے ذریعے سے جو بھی گھر کے افراد، اولاد ہیں، ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، شوہر ہے، یہ کھائیں گے تو اس کے اندر نور آئے گا، فرما برداری آئے گی. باہر کے کھانوں سے حفاظت کرو. تو پہلا یہ تھا. دوسرا ایک اصول، کام کو وقت پر سمیٹنے کی عادت ڈالے. کام کو وقت پر سمیٹنے کی عادت ڈالے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہر کام کو اپنے وقت پر سمیٹنے کی عادت ڈال دیجیے. آج کا کام کل پر نہ چھوڑیے کہ یہ بھی کل کر لوں گی اور یہ بھی کل کر لوں گی. کل کل کرتے اتنے کام جمع ہو جاتے ہیں، کل کل کرتے اتنے کام جمع ہو جاتے ہیں کہ پھر انسان ان میں سے کچھ بھی نہیں کر پاتا، پھر وہ کل آتی ہی نہیں ہے. وہ کل کل پر جاتی ہے، پھر کل پر جاتی ہے، کل ہی نہیں آتی ہے. جب زیادہ کام ہو جاتے ہیں تو پھر دماغ کام نہیں کرتا، تو ایک بھی کام نہیں ہو پاتا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی زندگی کو دیکھیے، اپنا کام خود سمیٹتی تھی، وہ اپنا کام خود سمیٹتی تھی، حتیٰ کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ان کے ہاتھوں کے اندر گھٹے پڑ گئے تھے، نشان پڑ گئے تھے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنے گھر کا کام خود کرتی تھی. سیدہ اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ عنہا اپنے گھر کے کام خود کرتی تھی. جس طرح مرد مصلی پر بیٹھ کر عبادت کرے تو آپ سمجھتی ہے کہ اس کو اجر مل رہا ہے، اس سے زیادہ آپ کو اجر اس وقت ملتا ہے جب آپ گھر کا کام کاج کو سمیٹ رہی ہوتی. آپ لوگ یہ نہ سمجھے، بیویاں یہ نہ سمجھے کہ مرد تو مصلی پر بیٹھ کر عبادت کر رہا ہے، ہمیں تو موقع ہی نہیں ملتا، ہم تو صبح سے لے کر شام تک بس کام کو سمیٹنے میں لگی ہوئی ہے. یاد رکھیے، آپ کو اس سے بھی زیادہ اجر ملتا ہے آپ جب گھر کے کام کو سمیٹ رہی ہوتی ہے. سبحان اللہ، بتاؤ. اور آپ اس اجر کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ چلو ہم بھی ذرا لمبی لمبی نماز اور رکعتیں پڑھے تاکہ ہم بھی ان سے آگے بڑھ جائیں. تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو کام کے اندر ہی اتنا بڑا اجر دے دیا. بایزید بوستامی رحمت اللہ علیہ نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ ہر وقت مسجد میں نوافل میں مصروف رہتا ہے، مسجد میں دیکھو تو پڑھتا رہتا ہے. انہوں نے پوچھا، تیرا کیا حال ہے؟ بایزید بستامی نے کہنے لگا، میرا بڑا بھائی ہے، اس نے میرا کاروبار کو سنبھال لیا ہے، میرے کاروبار اور میری روزی کا ذمہ لے لیا ہے. مجھے کہا کہ تو اللہ کے لیے فارغ ہو جا اور میں تیری روزی سنبھال لوں گا، مجھے عبادت کے لیے فارغ کر دیا. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، تیرا بھائی بڑا عقل مند ہے، कि तेरी सारी इबादत का अजर तेरे भाई को मिलेगा। टू इन वन, उसको कारोबार का तो अजर मिल रहा है, इसकी इबादत का अजर भी उसको मिल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कहने लगा तेरा भाई को मिलेगा, तेरा भाई तुझसे अफजल काम में लगा हुआ है। तो कहने का मकसद ये है कि मुसल्ले पर ही फकत इबादत नहीं होती, बल्कि औरत जो घर के काम काज कर रही होती है, सब कुछ उसका इबादत में लिखा जाता है। तो जो नेक बीविया है वो घर की खिदमत करके दो अजर लेती है, एक तो खिदमत का भी, और मर्द को नमाज के लिए फारिग कर दिया है, दूसरे काम के फारिग कर दिया है, तो उसका भी अजर उसको मिल रहा है। उसको टेंशन नहीं दिया, वरना उसको टेंशन दे दिया होता तो उसको एक ही अजर मिलता, और उसको फारिग कर दिया, बोले जाओ तुम काम करो कोई बात नहीं, हम तुम्हारी खिदमत के लिए तैयार है, तो उसको डबल अजर मिल रहा है। तो देखो ये शॉर्टकट रास्ता है अल्लाह तक जाने के लिए, और तुमने बहुत लंबा रास्ता पकड़ लिया है, तो आ जाओ टर्न कर लो। नहीं भाई अल्लाह की रजा के लिए करते हैं ये नियत करना जरूरी नहीं है, वो तो पता ही चल जाएगा। कभी कभी नियत तो करते हैं और दिल में किसी और के लिए होता है, तो क्या फायदा नियत करके भी। आप लोगों ने नियत जबान से बोलने का नाम समझा है, अरे नियत तो दिल के अंदर जो छुपा हुआ है वही अल्लाह जानते हैं, और वो लिखेंगे जबान से तो कुछ अल्लाह तेरे रजा के लिए कर रही हूं और अंदर कुछ और है। इसलिए रजा का पता कब चलता है, जब उसके अंदर अगर शोहर ने कोई नुक्स निकाला तो आपने खिदमत नहीं छोड़ी, आपने सबर करके पी लिया, इस बात की अलामत है कि ये अल्लाह के लिए किया था। और अगर झगड़ा कर दिया, काम को छोड़ दिया, इस बात की अलामत है कि आपने उसको राजी करने के लिए किया। वो तो जब इम्तिहान आएगा और पेपर जब आप भरोगे ना, तो उसमें पता चलेगा कि आप फेल हुए कि पास हुए। अल्लाह ताला फिर इम्तिहान लेते हैं कि तुमने किसके लिए किया था। इसलिए बोलो, लेकिन हकीकत में दिल के अंदर होना जरूरी है। तो फरमाया आज मुसीबत यह है कि घर में काम को औरतें इबादत समझकर नहीं, मुसीबत समझकर करती है। घर में औरतें इबादत समझकर नहीं, मुसीबत समझकर करती, याद रखिए वो इबादत है। चुनांचे उनकी हर वक्त एक ख्वाहिश होती है कि कोई काम करने वाली मिल जाए, कि मैं सिर्फ बताऊं और वो आगे काम करे, या काम करे ताकि मैं थोड़ा सा नाफारिग हो जाऊं, वो काम करे, अब बताए, अब बता के काम करो। काम करवा लिया, बता के काम करवा लिया, तो जिस्म ने काम करने की मशक्कत उठानी थी और उस पर आपके नामे आमल में अजर लिखा जाता था, वो अजर तो नहीं लिखा जाएगा, आपके दर्जे फिर कैसे अल्लाह के यहां बढ़ेंगे। इसलिए काम वाले साथ में रखे, लेकिन उसी से पूरा काम ले ले, हाँ अपने साथ में मोइन और मददगार करे, ताकि हम थक न जाए बल्कि ज्यादा काम कर सके, इसलिए तो ठीक है। वरना सारा उसे ऑर्डर देते रहे कि नहीं नहीं इबादत नहीं, मैं तो कुछ और इबादत करूं, तो अल्लाह के वास्ते ये ना समझिए कि ये इबादत नहीं है, ये बहुत बड़ी इबादत है और इखलास वाली इबादत है। नमाज पढ़ेंगे तो हो सकता है उसमें इतना इखलास ना हो, खिदमत करेंगे उसमें इखलास ज्यादा आता है। तो फरमाया उस पर आपके नामे अमल में अजर लिखा जाना था, वो अजर तो नहीं लिखा जाएगा, आपके दर्जे फिर कैसे अल्लाह के यहां बढ़ेंगे। इसलिए घर के काम में पसीना बहाना, मशक्कत उठाना ऐसा ही है कि जैसे ईशा के वजू से फजर की नमाज की इबादत का अजर पाना, ईशा के वजू से फजर की नमाज का अजर पाना, तो ऐसे ही घर के काम काज करने से भी अजर मिलता है। इसलिए औरत घर के कामों को खुशी से कबूल करे। अब बताओ जिन माँ बहनों ने एतिकाफ वालों की खिदमत की है, रात में थके हैं, दिन में थके हैं, फिक्र की है, तो उनको एतिकाफ का भी अजर मिल गया है, क्या नहीं भाई? क्योंकि हमको फारी कर दिया। उन्होंने अपने घर में सारी फिकर ली, वक्त पर तैयार किया, वक्त पर भेजा, तो उनको देखो वो समझे कि हमने क्या किया। अरे आपने तो खिदमत का भी अजर लिया और ऊपर से एहतिकाफ में बैठने का भी अजर ले लिया। हालांकि आप एहतिकाफ में बैठे नहीं, लेकिन बैठने के न बैठने के बावजूद भी बैठने का अजर मिल गया। अल्लाह, इसलिए औरत घर के कामों को खुशी से कबूल करे और अपने दिल में सोचे कि इन कामों की वजह से और ये सोचे अपने दिल में ये सोचे कि इन कामों की वजह से मेरा रब मुझसे राजी होगा। चुनांचे एक हदीस पाक में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नेक औरत वो है जिसका दिल अल्लाह की याद में मसरूफ हो, जिसका दिल अल्लाह की याद में मसरूफ हो और उसके हाथ काम काज में मसरूफ हो। तो ये तो माशाल्लाह कर रहे हैं, ये सीखना पड़ता है कि दिल अल्लाह की याद में मशगूल हो और हाथ काम काज में मसरूफ हो, तो ये दो काम एक साथ हो सकते हैं। जब नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तो उसका मतलब यह है कि औरत को घर के काम काज खुद करने की आदत डालनी चाहिए। इसके दो फायदे हैं, एक तो ये कि काम समेटेंगे और अजर मिलेगा, दूसरी बात कि अपनी सेहत भी ठीक रहेगी। थोड़ा सा घर में काम काज करेंगे तो सेहत ठीक रहेगी। चुनांचे आज घर के काम काज करने की आदत नहीं, इसलिए लड़कपन की उम्र होती है और बीमारियों में मुबतला हो जाती है। यानी अभी उम्र छोटी होती है और बीमारियां बहुत बड़ी बड़ी आ जाती है जी। कोई कहती है मेरे तो सर में दर्द है, जरा सा बस कुछ बात सोचती हूं तो सर में दर्द हो जाती है। कोई कहती है कि मुझे कमर में दर्द शुरू हो गया है, किसी को आंखों में अंधेरा महसूस होता है। अरे ये सारी मुसीबतें हाथ से काम न करने की वजह से आती है। सैयद आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा के घर में एक चक्की थी, वो चक्की के ऊपर गंदुम खुद पीसती थी। अभी तो घरों में चक्की ही नहीं है ना, बोले पिसा हुआ आटा तैयार मिल रहा, तो खुद पीसती थी जिससे रोटी बनाई जाती थी। अब अगर उम्मुल मोमिनीन अपने हाथों से चक्की खुद पीसती थी तो फिर आज की औरत अपने घर का काम खुद क्यों नहीं करती। जब घर का काम नहीं करेंगे तो फिर कहेंगे जी अब हमें स्विमिंग क्लब में जाने की जरूरत है, स्विमिंग क्लब ढूंढेंगे। अरे घर करो ना, खिदमत के स्विमिंग में चले जाओ, सब ठीक हो जाएगा। स्विमिंग क्लब में जाने की जरूरत है क्योंकि चर्बी बहुत बढ़ गई है, तो मुझे जरा उतारना है। जी तो फरमाया फिर हमें ट्रेडमिल लाकर दे ताकि हम उस पर चला करें, और हमारा इलाज फिर ट्रेडमिल लाना पड़ेगा। क्या जरूरत है इनकी घर के कामकाज में, एक ट्रेडमिल की क्या जरूरत है घर के कामकाज में। एक तो अजर मिलेगा, दूसरा खाविन का दिल जीत लोगी, सबसे बड़ी बात यह है मोहब्बतें बढ़ेगी, और फिर तीसरा ये कि खुद ब खुद शुगर बर्न होगी, फिर शुगर की बीमारी नहीं आएगी और आपकी सेहत को भी अल्लाह ताला ठीक रखेंगे जी। आपकी सेहत को भी अल्लाह ताला ठीक रखेंगे। तो घर के कामकाज को अपनी इज्जत समझे और अपना फर्ज मनसबी समझे और उसको समझे कि मैं मुसल्ले पर बैठकर जो इबादत करूंगी उससे ज्यादा घर के काम काज करने से मुझे अल्लाह का कुर्ब नसीब होगा। अल्लाह का कुर्ब नसीब होगा। तो अब जो देखो, जिसको ये खिदमत की नीयत से इबादत समझकर अगर घर के काम करेंगे तो फिर देखो जो जॉइंट फैमिली में सास और बहू है तो बहू अगर खिदमत करेगी कि मुझे इन लोगों को फारिग करना है, तो उसको इबादत का सवाब मिल गया और खुशी से काम करेंगे और कोई शिकायत नहीं होगी। शिकायत तो कब होती है, सारा काम मुझ पर डाल दिया और दूसरे को कुछ भी काम नहीं करते, उनको ये मौका मिलता है ये मौका, मुझे तो कुरान पढ़ने का भी मौका नहीं मिलता। अरे तुम्हें तो कुरान पढ़ने वालों का भी अजर मिल रहा है, खिदमत का भी अजर मिल रहा है, नवाफिल पढ़ने वालों का भी अजर मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। तो अब वो बहू बहुत खिदमत करेगी और खुशी के साथ करेगी जी, शिकायत नहीं होगी। और जब ये चीज दिमाग में नहीं होगी तो फिर शिकायत पैदा होगी, खाली सारा काम मुझे ही दे दिया, दूसरी तो कोई करते नहीं है घर में, तो दूसरी भी मसरूरात है, तो ये लड़ाई झगड़ा हो जाता है। इसलिए अल्लाह का शुक्र समझे। हाँ, हमारे बस का हम खुद करेंगे और हम थक जाएंगे तो अल्लाह हमारी मदद जरूर करेंगे। जी, तो फिर ट्रेडमिल लाने की जरूरत नहीं है फिर, और अपना फर्ज मनसबी समझे और उसको समझे कि मैं मुसल्ले पर बैठकर जो इबादत करूंगी उससे ज्यादा घर के कामकाज करने से मुझे अल्लाह का कुर्ब नसीब होगा। तो दो उसूल हुए नेक बीवी के। पहला क्या है, खाना पकाते वक्त हाँ जिक्र करते हुए अल्लाह की याद के साथ खाना बनावे तो उसका असर सब पर पड़ता है। दूसरा, काम को वक्त पर समेटने की आदत डाल। काम तो सुबह से शाम तक सुस्त होकर बैठे नहीं, आज का काम आज ही कर डालो, आज का काम कल पर न डाले। जी, और तीसरा काम, घर को साफ सुथरा रखिए। तीसरा काम क्या है, घर को साफ सुथरा रखिए। तीसरी चीज, अपने घर को साफ सुथरा रखिए। कुछ औरतों की आदत होती है कि तबीयत में सुस्ती होती है, हर वक्त फैलाव डाल देती है, थोड़ा सा काम किया के बस बिस्तर पर जाके थोड़ा सा लेट गए, नींद बहुत आती है, बोले हर वक्त फैलाव डाल देती है। घर के अंदर फैलाव का होना और फिर सारे काम सफाई के बगैर इधर उधर डाल दिया, बोले हो गया। तो फरमाया, घर के अंदर फैलाव का होना, चीजों का बेतरतीब पड़ा होना, ये अल्लाह को नापसंद है, ये अल्लाह को नापसंद है। हदीस पाक में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहु जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह ताला खुद भी खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। तो जब नबी अलैहिस्सलाम ने गवाही दे दी कि अल्लाह ताला खूबसूरती को पसंद करते हैं, तो उसका मतलब यह है कि घर की बिखरी हुई चीजें, बिखरी पड़ी चीजें अल्लाह ताला को पसंद नहीं आती। तो घर में हर चीज की एक जगह बना के रखो, कपड़ों की अपनी जगह, धोने वाले कपड़ों की अपनी जगह और धोए हुए कपड़ों की अपनी जगह, और उसके अलावा घरों के अंदर बर्तनों की अपनी जगह, तो हर एक चीज की एक अपनी अपनी जगह होगी। तो उस जगह से वो चीज अगर हटी हुई है तो फिर उसको समेटने की कोशिश करे कि उस जगह को अपनी अपनी जगह पर रख दिया जाए। उसको कहते हैं घर का समेटना, क्योंकि घरों में इधर उधर जब चीजें होती है तो घर में आना अच्छा नहीं लगता। लिहाजा औरत इस नियत से अपने घर को साफ सुथरा रखे कि मेरे घर की चीजें तरतीब से पड़ी होगी और साफ सुथरा घर होगा तो मेरे मालिक को यह घर अच्छा लगेगा। जी, मेरे मालिक को यह घर अच्छा लगेगा, मेरी मेहनत कबूल हो जाएगी। जब आप घर में बैठी क्लीनर झाड़ू चला रही हो तो यूं समझिए कि घर ही साफ नहीं हो रहा है, बल्कि अल्लाह ताला आपके दिल के घर को भी साफ फरमा रहे। घर में कितने बेहतरीन बात है, तुम घर में झाड़ू मार रहे हो लेकिन घर साफ नहीं हो रहा है, साथ साथ में दिल भी साफ हो रहा है। अब जो दिल साफ हो रहा है वो दिखाई नहीं देता, क्यों, कि भाई ये झाड़ू मारना इबादत है कि नहीं। जब झाड़ू मारना इबादत है तो इबादत से दिल साफ होता है। अब झाड़ू मारने को इबादत नहीं समझोगे तो फिर झाड़ू तो मार रहे, घर को तो साफ कर रहे हैं, लेकिन दिल को खराब कर रहे हैं। दिल खराब हो रहा है क्यों? कि झाड़ू मार रहे और दिल के अंदर बदगुमनियां, अरे वो नहीं करते, वो नहीं करते, वो नहीं करते, अरे सब काम। तो अब ये बोल तो किसी को नहीं, लेकिन दिल खराब हो रहा है, ये तो दिल में आएगा ना। अगर उसको इबादत नहीं समझेंगे, अगर उस झाड़ू मारने को इबादत नहीं समझा, मुसीबत समझ लिया, तो जाहिर बात है फिर दिल खराब होगा, दिल में बदगुमानियां जरूर आएगी। तो इसलिए इबादत समझ लूंगे तो हमारा दिल भी साफ होगा, हमारा घर भी साफ होगा, तो 2-in-1 हो गया। कितना शॉर्टकट रास्ता है, वरना किसी अल्लाह वाले के पास बैठकर मर्द को कितने सालों मुजाहिदा करने के बाद उसका दिल साफ होता है, और यहां रोजाना झाड़ू मारो दिल साफ हो रहा है। ये अगर हमारी समझ में आ जाए, खास करके माँ बहनों की समझ में आ जाए, तो फिर वो सोचेंगे कि भाई झाड़ू तो रोजाना हम ही मारेंगे, काम वाली को भी नहीं कहेंगे तू मार, मेरा दिल साफ होगा। अल्लाह हमें समझा दे। जी बड़ी अच्छी बातें हैं। तो फरमाया तो यूं समझिए कि घर ही साफ नहीं हो रहा, बल्कि अल्लाह ताला आपके दिल के घर को भी साफ फरमा रहे हैं। तो घर का झाड़ू देना यूं समझिए कि मैं बैठी अपने दिल की जुल्मत पर झाड़ू दे रही हूं। घर को साफ सुथरा रखिए, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाह युहिब्बुत तवाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन, अल्लाह ताला तौबा करने वालों से भी मोहब्बत करते हैं और पाकीजा रहने वालों से भी मोहब्बत करते हैं। इसलिए हर चीज का साफ सुथरा होना, पाकीजा होना और घर की हर चीज का सेट होना, अपनी अपनी जगह पर होना, अल्लाह ताला की खुशनुदी का सबब बनता है, खुशनुदी का सबब। चीजों को तरतीब से रखने का अजर मिलता है। नबी अलैहिस्सलाम ने एक हदीस पाक में फरमाया कि औरत जब घर में पड़ी हुई किसी बेतरतीब चीज को उठाकर तरतीब से रख देती है तो अल्लाह ताला एक नेकी अता फरमाते, एक गुना माफ फरमा देते हैं। अब देखिए हर औरत घर में बर्तन दुरुस्त करती है तो उसे कितनी नेकियां मिल जाती है, कितने गुना माफ हो जाते हैं। कपड़े समेटती है, चीजों को समेटती है, घर में रोजाना अपने घर की चीजों को समेट कर देती है। जितनी चीजों को उसने अपनी अपनी जगह पर रखा है, हर चीज को रखने के बदले एक गुना माफ हुआ और एक नेकी अल्लाह ने अता फरमा दी। अब बच्चे घर में हो तो वो तो फिर वो अपने जो टॉयज है सारा बिखेर देते हैं। अब वो बिचारी बैठे बैठे एक एक को जमा करके उसके डब्बे में डाल दिया तो उसको कितना अजर मिला, और ऊपर शौहर जब आएंगे तो वो भी सारे कपड़ों को पता नहीं इधर उधर डाल देते हैं। अब ये जाने के बाद सबको समेट रही होती, क्योंकि मर्दों का काम है कबाड़ खोला और एक कपड़ा ढूंढना है, वो सारे कबाड़ के कपड़ों को पहले नीचे करेंगे। अब बीवी आकर गर्म हो जाएगी, अरे क्या तुमको तो कपड़ा लेना भी नहीं आता, अरे उसको गुस्से होने की जरूरत नहीं, चलो अभी मैं खिदमत करूंगी, और उसको एक एक कपड़े को अपनी जगह रखेंगे तो आपको तो अजर मिलेगा। अभी बैठी कहती होंगी ऐसा अजर नहीं चाहिए कि एक कपड़े को ढूंढने के लिए पूरा कबाड़ के कपड़े नीचे। अल्लाह अकबर। तो फरमाया अपनी अपनी जगह पर रखा, हर चीज को रखने के बदले एक गुना माफ हुआ, ठीक है। तो इस तरह देखिए कि एक औरत घर में कामकाज के दौरान कितना सवाब हासिल कर लेती है। इस तरह एक औरत घर में कामकाज के दौरान कितना सवाब हासिल कर सकती है, अगर इस नियत से घर को साफ रखेगी कि लोग आएंगे और तारीफ करेंगे, अगर इस नियत से घर को साफ रखेगी कि लोग आएंगे और तारीफ करेंगे तो ये आपकी सारी मेहनत जीरो होगी। जी जी बच्चों को साफ करने के बारे में कहा जाए लेकिन तरबियत की नीयत से, ताकि बच्चे तरबियत में रहे, तो बोले हर चीज तुम्हें जब समेट बिखेर दिया है तो अपनी अपनी जगह पर रखो, तो बच्चों को भी अजर मिलेगा और उनकी तरबियत भी होगी। कराना चाहिए बच्चों से, वो माँ को तो अजर मिलेगा क्योंकि माँ ही जरिया बनी है बच्चों को समेटने के लिए, सिखाने के लिए। तो ये आपकी सारी मेहनत सिफर हो जाएगी अगर आपने इसलिए घर को साफ किया। और बताओ आज तो जो भी घरों में अपने घर को साफ करती है तो यही नीयत, पता नहीं आने वाली क्या समझेगी, कोई मेहमान आने वाला क्या कहेगा, तो उसके लिए साफ करती है। तो याद रखे हमारी वो नीयत ना हो, हमारी नीयत कि मेरे अल्लाह ने कहा है घरों को साफ रखना, इसलिए मैं घर को साफ रखती। तो जो अल्लाह की बात को समझ कर काम करेगी तो उसको कभी सुस्ती नहीं होगी, इसलिए कि मखलूक ने कह भी दिया कि बड़ा अच्छा घर है तो आपको क्या मिल गया। अगर इतनी मेहनत करके पसीना बहा के फकत लोगों की जबान से ही आपने सुनना है कि भाई बड़ा अच्छा घर है, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे फकत कील, ये कहा जा चुका, अब उस पर कोई अजर नहीं मिलेगा। जी कहा जा चुका, अब उस पर कोई अजर नहीं मिलेगा, क्यों? वो तो बैकग्राउंड में आपको मिलने ही वाला है, वो तो मिलने वाला है। नीयत अच्छी रखे तो वो चीज तो लोग तारीफ तो करने ही वाले, लेकिन तारीफ की नीयत नहीं रखनी है, तारीफ की नीयत नहीं रखनी है, बल्कि नीयत अच्छी रखनी है। तो ये नीयत मत करे, नीयत ये करे कि मैं घर को सेट करूंगी क्योंकि घर वाली हूं और ये मेरी जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला खूबसूरत भी है और खूबसूरती को पसंद भी फरमाते हैं, लिहाजा मैं अपने घर को सेट करके रखूंगी। सेट करने का यह मतलब नहीं होता कि उसमें आप क्रिस्टल सजाएंगी और उसमें आप सैकड़ों डॉलर की चीजें लाकर रखेंगी, ये सेट करना नहीं, बल्कि जितने वसाइल हो जैसे भी हो जो हमारी हैसियत हो, मगर चीज के अंदर सफाई हो और सलीका मंदी हो, हर चीज अपनी जगह पर रखी हुई हो। सफाई के लिए कोई डॉलरों की जरूरत नहीं, बल्कि इंसान ने अपने कपड़े तो धोने ही होते हैं, तो जरा साफ सुथरे कपड़े रखने की आदत रख ले। इसी तरह चीजों को तो समेटना ही होता है, तो सलीका मंदी से चीजों को रख ले। तो सफाई और सलीका का होना ये घर के खूबसूरत होने की दलील होती है। ये जरूरी नहीं होता कि वो ऐसा सोचे कि बना हुआ हो, ऐसा पत्थर हो कि इसके टाइल्स ऐसी हो, ये सब जरूरत नहीं सोचने। भाई टाइल्स नहीं है, जैसा भी घर है आप उसको साफ रखे। तो पत्थर हो के बाहर के मुल्क से आए हुआ हो और तब जाके घर खूबसूरत लगेगा, इसको समझने की कोशिश करे। आज लोगों ने क्या समझ लिया, इस घर के अंदर जरा इस टाइप की टाइल हो और ये पत्थर तो ठीक नहीं, उस तो घर साफ रहेगा, और जरा ये नहीं, जैसा भी है तो घर तो साफ रखेंगे। अब उसमें रंग पुराना है तो भी साफ रहेगा। सफाई के लिए चीजों को असल समेट कर रखने का नाम सफाई है। तो तीसरी चीज क्या हुई, घर को साफ सुथरा रखे। पहली चीज क्या थी? जी पहली चीज क्या थी भाई? हाँ, खाने को फिक्र और जिक्र के साथ बनावे, और दूसरी चीज थी काम को वक्त पर समेटने की कोशिश करे, और तीसरी चीज थी घर को साफ सुथरा रखिए। अब चौथी चीज है सुनी सुनाई बात को आगे बयान न करे। किसी ने जरा सा कुछ डाल दिया तो फिर वो दूसरों को, वो तीसरों को, पूरी मार्केट में आ जाती है बात। तो ये बात मर्दों से ज्यादा औरतों में ज्यादा है, ये सुनी सुनाई बात को एक दूसरे को बहुत फैलाना। और आजकल तो व्हाट्सएप आ गया तो उस पर भी फैला देते, किसी ने व्हाट्सएप पर कुछ भेजा और उसने 15 को भेज दिया। सुनी सुनाई बात को फैलाना, आगे बयान न करे। देखो अच्छी बीवी की आदत होती है, तो सुनिए, सुनी सुनाई बात आगे करने की आदत अपने अंदर हरगिज न डाले। कई औरतें अधूरी बातें सुनकर अपने खाविन को पहुंचा देती है, खाविन को पहले बता दिए और बाद में कच्ची पड़ती है कि हाँ ये बात तो अधूरी थी, ये बहुत बुरी आदत है, बहुत बुरी आदत है। जरा सी बात सुनकर उसको आगे फैलाना शुरू कर देना, ऐसी बात जल्दी आगे नहीं करनी चाहिए, बल्कि जिस तरह एक रिसीवर होता है कि वो हर स्टेशन को रिसीव नहीं करता, खास स्टेशन फ्रीक्वेंसी को रिसीव करता है, बस आप भी अपने कामों के ट्रांसमीटर को ऐसा सेट करें, कामों के ट्रांसमीटर को ऐसा सेट करें कि जो भी औरत कोई बात कर रही है बस कानों तक तो सब आ जाए, दिल में हर बात को न जाने दिया जाए, हर बात दिल में न उतारे, दिल में वो बात जाए जो ठीक हो और शरीयत और सुन्नत के मुताबिक हो। सुनी सुनाई बातें जल्दी से इधर कर देना उधर कर देना औरत के लिए मुसीबत का सबब बन जाती है। सुनी सुनाई बातें इधर उधर न करे, उसको निकाल दे, अच्छी बातें उसको ले ले, तो मुसीबत का सबब बन जाते। फिर की हुई बात को जस्टिफाई करना पड़ता है, यानी उसकी तहकीक करनी पड़ती है, वजाहतें देनी पड़ती है कि जी मैंने ऐसे तो नहीं कहा था, ऐसे कहा था, फिर झूठ बोलना पड़ता है। इसलिए अक्सर और बेशतर औरतों को अपनी बातें छुपाने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ता है, अपनी बात को छुपाने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ता है। और कई तो ऐसी होती है कि बात बात पर झूठ बोलती है। हदीसे पाक में आया है कि बंदा झूठ बोलते बोलते ऐसी कैफियत में आ जाता है कि अल्लाह ताला फरिश्तों को फरमाते हैं कि झूठों के दफ्तर में इसका नाम लिख दिया जाए, झूठों के दफ्तर में लिख दिया जाता है, इतना झूठ बोला कि अल्लाह ताला उसको लिख देते झूठ। बाज औरतें हर एक के सामने दिल खोल देती, जरा सा किसी ने बहुत अच्छी तरीके से प्यार से बातें की वो तो समझते कि बहन तो मेरी है, उसके सामने अपने दिल खोल देती है। कोई आई गई भी होगी तो उसको भी बता देगी। हत्ता के मिसाल के तौर पर अगर ये सफर कर रही है और लाउंज में फ्लाइट के इंतजार में बैठी है और उसके साथ वाली कुर्सी पर कोई औरत आकर बैठ गई, अब जैसे ही तारुफ होगा तो 2 मिनट के अंदर अपने खाविन की भी हकीकत बता देगी 2 मिनट के अंदर अपने खाविन की सारी हकीकत बता देगी, अपने सांस की भी हकीकत बता देगी, हत्ता कि अपने पेट में अगर कुछ है तो उसके बारे में भी बता देगी। ये कितनी बेवकूफी की बात है कि भाई हर एक के सामने बताने की क्या जरूरत है, ये सीखना पड़ता है। ये बेवकूफी की बात है कि जरा सी बात में इंसान इतना जल्दी अपने आप को दूसरों के सामने खोल देता है। ये चीज अच्छी नहीं होती बल्कि इस चीज के नुकसानात होते हैं। हर बात सुनने वाला खैर ख्वाह नहीं होता, हर बात सुनने वाला खैर ख्वाह नहीं होता। औरतें इस बात को अच्छी तरह नोट करें कि हर बात सुनने वाला तुम्हारा भला चाहने वाला नहीं होता, नहीं होता। औरतों की आदत होती है कि दूसरे का दिल खोलने के लिए पूछ लेती है, औरतों की आदत होती है पूछती है ना, दूसरे का दिल खोलने के लिए पूछ लेती है कि आपकी सास कैसी है, बस उसने सास का नाम लेना था, अब उसने तो सारा खोल देगी। भाई उसने बोला है तो आप उसके सामने अपने सांस की तारीफ करें तो शैतान होगा तो चुप। वो पूछने वाले इंसान होता है, शक्ल इंसान की है, हकीकत में वो तुम्हारा दुश्मन बन के आया है और आपने समझ लिया कि मेरे दोस्त है, हालांकि वो दुश्मन है। तो हमेशा जब ऐसे कोई सवाल पूछे तो हमेशा तारीफ करना, शोहर के बारे में पूछे तो ऐसी तारीफ करो तो दोबारा कभी नहीं पूछेगी। तो घर, क्योंकि ये इनका तो काम होता है कि कुछ घर की बात मिल जाए फिर ये सारी बातों को लेकर वहां मार्केट में डाल देते, या फितना करने के लिए आती है। बहुत सारी बहनें ऐसी होती है, आम आदत होती है, इसलिए कभी भी किसी ने अगर पूछा है शौहर के बारे में, सास के बारे में, तो हमेशा उनकी तारीफ करो, और तारीफ करने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। और अभी क्या लोग सवाल पूछते हैं, एक अजीब सवाल है कि बोला ना हम तारीफ करेंगे तो झूठ हो जाएगा। अब देखो देखो तो सही, ये नफ्स कितना बड़ा मुफ्ती बना, बोला ना तारीफ करेंगे तो झूठ हो जाएगा, और झूठ बोलना तो मना है। याद रखो, तो क्या तुम बुराई बयान करोगे झूठ नहीं होगा, इसलिए कि बुराई तो थी नहीं लेकिन तुम्हें नजर आई है और तुम उसको बुराई समझ रहे हो, वो तो उसको अच्छा ही समझ कर रही है, तुम्हारे फायदे के लिए कर रही है लेकिन तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा उसकी बात। और याद रखो उसमें उलमा ने कहा है कि अगर बुराई के अगर अच्छाई बयान करने में अगर तुमने झूठ भी बोला है तो वो झूठ नहीं, वो सच से अच्छा है जो सच जो झगड़ा करावे, तो उसमें हरज नहीं है और उस झूठ पर कोई गुनाह नहीं होगा। और हमेशा याद रखो कि अगर किसी की बुराई बयान की और वाकईतन उसके ऊपर कोई दलील पेश नहीं की तो कल कयामत के दिन पूछा जाएगा बगैर दलील के तुमने इसकी बुराई क्यों बयान की, और अगर तुमने किसी की तारीफ की है और उस पर कोई दलील नहीं तो वहां दलील नहीं पूछी जाएगी। तारीफ बगैर दलील के करना इजाजत है और बुराई बगैर दलील के करने की इजाजत नहीं है। इसलिए तो फरमाया हर बात सुनने वाला खैर ख्वाह नहीं होता। औरतें इस बात को अच्छी तरह नोट करें कि हर बात सुनने वाले खैर ख्वाह नहीं होते। औरतों की आदत होती है कि दूसरे का दिल खोलने के लिए पूछ लेती है कि आपकी सास कैसी है, आपका मियां कैसा है, और माशाल्लाह उन्होंने मियां की जिंदगी की ऐसी गर्दान याद की होती है कि उसी वक्त सरफे सगीर सुनाने शुरू कर देते हैं। सरफे सगीर ये तो आप नहीं समझोगे, यानी उसकी तो स्टोरी उसको इतनी पक्की याद होती है कि यहां जरा बटन दबाया कि वो सीढ़ी चालू हो जाती है। क्यों? कि वो तो सुनाते सुनाते हिफ्ज़ हो चुकी है, सूरह फातिहा की तरह, सूरह फातिहा की तरह। तो उसी को ये इल्मी जबान में कहते हैं, उसको तो उसकी गर्दान याद की होती है कि सरफे सगीर की तरह सुना देते हैं, जरा भाई जरा जरा जरा। तो ये होती है, और ये भी जहन में रखे से बचने की कोशिश करे। हिस्ट्री डिसीजन, क्या बोलते हिस्ट्री डिसीजन, हाँ ये क्या माना, जल्दबाजी से, हाँ जल्दबाजी से बचने की कोशिश करे। जरा सी बात सुनकर किसी के बारे में कोई फैसला लेना कि फुला ऐसा है और फुला ऐसी है, ये गलत बात है। कई मर्तबा बच्चे आपके सामने आएंगे, एक कहेगा फुलाने ने ये किया, आप फैसला न करें जब तक दूसरे की न सुन ले। और घरों में दो तीन बच्चे होते तो एक बच्चा दूसरे बच्चे की शिकायत करे, अम्मी ओ वो अब्दुल्ला ने तो ऐसा कर दिया, और अब्दुल्ला आएगा तो वो तो अब्दुल रहमान ने ऐसा कर दिया। तो फैसला मत करो, दोनों को बुलाओ जब तक दूसरे की न सुन ले। लुकमान अलैहिस्सलाम ने बच्चे को कहा कि बेटा अगर तुझे कोई आकर कहे कि फुलाने ने मेरी आंख निकाल दी और फोड़ दी तो तुम फैसला न करना जब तक कि तुम दूसरे की न सुन लेना। हो सकता है कि उसने उस दूसरे की दो आंखें निकाली हो और उसने इसकी एक निकाली, तो जालिम कौन बना, तो खुद जालिम है। हो सकता है उसने उसकी दो आंखें निकाली हो, इसलिए जरा सी बात सुनकर जल्दी फैसला लेने न करे। किसी चीज को फैसला लेने के लिए और जल्द फैसला कर लेना औरत के लिए मुसीबत का सबब बन जाता है, इसलिए फैसला जल्दी न करे। तो कितनी बातें हुई, चौथी बात सुनी सुनाई बात पर अमल न करे, सुनी सुनाई बात को आगे न भेजे बल्कि इसकी पूरी तहकीक करने के बाद आगे भेजे। तो एक तो ये चौथी चीज है। तो पहली चीज क्या थी भाई, खाना बनाना, कैसे, म्यूजिक सुनते सुनते, अरे बोलो ना, जिक्र फिकर के साथ खाना बनाना। दूसरा, काम को वक्त पर समेटने की आदत डाले, तीसरा घर को साफ सुथरा रखने की आदत रखे, और चौथा सुनी सुनाई बात पर अमल न करे, और पांचवा खाविन को दुआओं के साथ रुखसत किया करे। खाविन को दुआओं के साथ रुखसत किया करे। आज तो खाविन जाता है, अच्छा ठीक है बाय बाय करके क्या सुनी सुनाई बात को आगे न फैलाए। जी तो अब सुनो, जब भी खाविन घर से रुखसत होने लगे उसको हमेशा दुआ के जरिए अलविदा कहे, फी अमानिल्लाह कहे। ये भी दुआ है ना, और हदीस में दुआ आती है अस्तौदियुकुमुल्लाह ला तज़िउ वदायिउहु। ये उनको अस्तौदियु दीनकुम व अमानतकुम व ख़वातिम अमालिकुम, ये भी दुआ है। या फी अमानिल्लाह कहे, दुआ दे जैसे हमारी बड़ी औरतें पहले वक्तों में अपने मियाँ को कहती थी। ये कितनी प्यारी बात है कि मेरे अमानुल्लाह के हवाले, कि अमानुल्लाह यानी अल्लाह के हवाले, जब आपने अपनी अमानत अल्लाह के हवाले कर दी तो अल्लाह ताला मुहाफिज है, वो आपकी अमानत की हिफाजत करेगा। आज कितनी औरतें हैं जो खाविन को घर से निकलते हुए अल्फाज कहती है, कितनी औरतें हैं खाविन को निकलते अल्फाज कहती है, जो खाविन को घर से निकलते हुए अल्फाज कहते, बहुत कम, चूंकि नहीं कहती इसलिए उनको खाविंदों की हिफाजत भी नहीं होती। फिर रोती है कि खाविंद बाहर जाते हैं तो उनको बाहर ज्यादा दिलचस्पी होती है, भाई आपने तो अपनी अमानत अल्लाह के हवाले ही नहीं की है, अब आप अल्लाह से क्या तवक्कु रखते हैं। अल्लाह के हवाले करते तो अल्लाह की हिफाजत भी करते, क्यों वो उनकी हिफाजत करे। तो नेक बीवियां हमेशा खाविंद और बच्चों को घर से रुखसत होते हुए उनको दुआएं देती है, ऊंची आवाज से कहने की आदत डाले, जोर से जरा कहे ताकि ये सबक सबको मिले, ऊंची आवाज से कहने की आदत डाले, बल्कि दरवाजे तक साथ आया करे और फिर कहा करे, फी अमानिल्ला, फी हिफ्जिल्ला, फी जवारिल्ला, कुछ न कुछ ऐसे अल्फाज कहा करे, या वैसे ही कह दिया करे कि मेरी अमानत अल्लाह के हवाले। तो जब आप अपनी अमानत अल्लाह के हवाले कर चुके, अल्लाह ताला आपको कभी लेट डाउन नहीं होने देंगे। अल्लाह ताला पे भरोसा और यकीन तो हमारी जिंदगी की बुनियाद है। जी अल्लाह, देखो एक एक चीज सिखानी पड़ती, अब ये चीजें हमारे माशरे में कोई सिखाने वाला ही नहीं, बल्कि जितने उसूल आ रहे हैं माँ बहने उसको एक एक कागज पर बड़े हुरूफ से लिखकर घर में लटका के रख दे कि मुझे ये 10 चीजें अपने, ये 20 चीजें अपने घरों में करनी है, वो पढ़ेगी तो उसको याद भी रहेगा और अगर कोई किसी बात में गुस्सा आ गया तो सबर भी हो जाएगा, और शोहर भी अपनी 10 बड़ी गलतियों को भी लिखकर लटका दे, बस रोजाना खाली उसको देखे मेरी कौन सी गलती हुई, तो वो अपना काम करे या अपना काम करे, और अगर बीवी ने शोहर को टोका तो कहे के देखो तेरी 20 चीजें हैं, और अगर शोहर ने बीवी को टोका बोले तुम्हारी 10 चीजें हैं, तुम ये 10 नहीं करोगे तो मैं ऑटोमेटिक सही हो जाऊंगी और तुम ये 20 करोगे तो मैं ऑटोमेटिक सही हो जाऊंगी, लड़ाई होगी ही नहीं, अगर अपना अपना काम करेंगे तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। तो जी वो लटकाने के बाद झगड़ना मत आपस में वरना तो मुसीबत बन जाएगी, नहीं लटकाने के बाद मोहब्बत से रहने के लिए लटकाना है, एक दूसरे के अंदर नुक्स निकालने के लिए नहीं तो पलटी कर देंगे। तो एक आदत यह हो कि जब खाविन घर से रुखसत होने लगे तो दरवाजे तक जाकर उसको अलविदा कहे। जी दुआ के जरिए, और जब खाविन घर में आए जितनी भी मसरूफ हो, खाविन जब घर में आए तो जितनी भी मसरूफ हो एक मिनट के लिए अपने आप को फारिग करके मुस्कुरा के अपने खाविन का इस्तकबाल करे। जब बीवी मुस्कुरा के खाविन का इस्तकबाल करेगी हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ, तो जाहिर है कि खाविन की नजर मुस्कुराते चेहरे पर पड़ेगी तो उसके दिल में भी मोहब्बत उठेगी। इसलिए जब भी पता है कि उनका आने का वक्त है उस वक्त में खुद जाकर दरवाजे पर इस्तकबाल करे, सलाम करे, मुस्कुराते चेहरे से मिले, इसकी आदत हमेशा डाल दो। चाहे बुढ़ापा आ गया तो भी इसकी आदत डाले। ये नहीं कि अभी बुढ़ापे में क्या जरूरत है, तो जवानी की जरूरत थी क्या? बुढ़ापे में अल्लाह की रजा नहीं चाहिए? अरे उस वक्त में भी करेंगे, और लकड़ी हाथ में आ गई और चलते रहे तो उस वक्त भी आकर करना। नहीं नहीं, अल्लाह ताला हमेशा सेहतमंद रखे। देखो ये सारे काम करोगे तो और अच्छी सेहत मिलेगी, क्योंकि दिमाग का टेंशन नहीं है तो सेहत अच्छी होती है। आज बीमारियां टेंशन से ही आती है, मैदा खराब हो गया टेंशन से, खून कम हो गया टेंशन से, सब कुछ उसी से हो रहा है। और अगर दिमाग पर कोई फिक्र नहीं है, चैन और सुकून है, तो बीमारियां भी आधी खत्म हो जाती है। याद रखे। तो फरमाया जब बीवी मुस्कुरा के खाविंद का इस्तकबाल करेगी तो दिल में भी मोहब्बत उठेगी। आज इस चीज पर अमल कम है, इसलिए जिंदगी में परेशानियां ज्यादा है। अब छठी चीज, खाविंद के आने से पहले अपने को साफ सुथरा कर ले। छठा पॉइंट ये है कि जब खाविंद के आने का वक्त हो तो बीवी को चाहिए कि अपने आप को साफ सुथरा रखे। देखो ये सारी इबादत है, आप इस्तकबाल करोगे ये इबादत होगी। अगर खाविंद घर पे आया है और आपको नमाज या कुरान में पढ़ रहे हैं, बोले वो तो आ जाएंगे फिर मिलेंगे, नहीं, कुरान बन करके नमाज का बाद में पढ़े और पहले इस्तकबाल करेंगे तो ये इबादत उससे बड़ी होगी। लेकिन आजकल न जानने की वजह से नहीं, मेरी नमाज बड़ी इस्तकबाल छोटा, अरे नहीं। इसलिए जितने भी छह काम हुए ना, 20-20 काम जो है वो सब के सब इबादत है। खाली खाना पकाना इबादत है ऐसा नहीं है, सफाई सुथरी इबादत है, नहीं, ये इस्तकबाल भी इबादत है। और ये छठा पॉइंट है कि उनके आने से पहले अपने आप को साफ सुथरा रखे। होता यह है कि बाहर जब निकलना हो तो दुल्हन की तरह सज धज के बाहर जाएगी, और खाविंद ने जब आना हो तो फिर ऐसी मैली कुचेली रहेगी कि बंदे की देख के ही तबीयत खराब हो जाए। जी भाई, तो आज तो देखो इससे खुद को देख लो कि मैं किसके लिए कर रही हूं, खुद ही देख ले। अगर बाहर जाना है तो दुल्हन बनकर सज धज के जाना है तो किसको दिखा रहे, मालूम हुआ दूसरों को। और घर में जब शोहर आ रहा है कुछ नहीं कर रहे, उसका मतलब उसको तो दिखाना ही नहीं, तो फिर नुकसान हुआ ना, तो तुम्हें इबादत का कहां सवाब मिलेगा। आज बाहर लोगों को तो खुश कर रहे हैं और घर में शोहर को, और अल्लाह और नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म यह है कि अपने शोहर को खुश करो, बाहर को खुश करना कोई जरूरी नहीं। जी, इसलिए बंदे की देख के ही तबीयत खराब हो जाए, ये बहुत बड़ी गलती है। बल्कि जितनी भी नेक औरतें गुजरी है, इन सब की आदत रही है कि वो रोजाना अपने खाविंद के आने के वक्त पर अपने आप को बन्ना सवार लेती थी, और ये बन्ना सवारना उनके लिए इबादत के मानिंद हो जाता है। उसका पता नहीं क्यों नहीं, इसका पता नहीं क्यों नहीं ख्याल करती। हालांकि किताबों में भी ये बात बहुत लिखी गई है, लेकिन पता नहीं औरतें इसका ख्याल नहीं रखती है। एक नेक बीवी के बारे में आता है कि वो हर रात अपने आप को सवारती और सजाती और अपने मियां से पूछती थी कि आपको मेरी खिदमत की जरूरत है। अगर वो कहते हाँ तो मियां के साथ वक्त गुजारती, और अगर वो कहते नहीं मुझे नींद आ रही है सोना है, तो मुसल्ले पर खड़ी होती और सारी रात अपने रब के सामने हाथ बांधकर गुजार देती। तो देखा, इबादत बाद में करती थी, पहले शोहर के पास बैठकर वक्त देती थी। तो बीवी को चाहिए कि अपने खाविंद के लिए घर में बन सवर कर रहे। जी, तो चाहिए कि इस तरीके से एक नेक बीवी के बारे में। तो बनने सवरने का यह मतलब नहीं होता कि रोजाना दुल्हन के कपड़े पहने, ये नहीं होता। बस कपड़े हो, साफ सुथरे हो, सलीका मंद हो, और इंसान ने बालों में कंघी की हुई हो, चेहरा धोया हुआ हो, साफ सुथरा हो, खुशबू इस्तेमाल की हुई हो, उसी को बनना संवरना कहते हैं, वरना आजकल तो बनना संवरना जरा लिपस्टिक हो, वो नहीं है बनना संवरना, भाई साफ सुथरे हो। वो तो सब एक्स्ट्रा चीजें ले आए हैं, उससे तो चेहरा और खराब होता है, केमिकल लगा देते, नकली खूबसूरत ले आते। अरे अल्लाह ताला ने नमाज के अंदर खूबसूरती रखी है, नमाज की जो आदत होगी उसका तो जो चेहरे की खूबसूरती वो नेचुरल होगी, उसी को बन्ना सवरना कहते। तो ये बन्ना सवरना औरत के घर के फराइज में शामिल है। जी, तो इस तरीके से उसमें सुस्ती हरगिज नहीं करनी चाहिए। आप बाहर जाए तो सादा कपड़ों में जाए, बाहर जर्क बर्क लिबास पहनने की ज्यादा जरूरत नहीं। सादा कपड़ों में बाहर जाएंगे तो फितनों से बच जाएंगे। याद रखे, लिबास की सादगी औरत के हुस्न की हिफाजत का सबब बन जाती है, हुस्न की हिफाजत। इसलिए दस्तूर बनाए कि जब बाहर जाए तो कपड़े साफ सुथरे हो मगर सादा हो, और घर में हो तो फिर कपड़े अपने खाविन के लिए जो भी पहन सकती है मगर अपने आप को बना सवार के तैयार रखे। एक मरतबा नबी इस्लाम अपने सहाबा रदी अल्लाह अन्हु के साथ एक लश्कर से वापस आ रहे थे, मदीना से एक लश्कर से वापस आ रहे थे। मदीना के बाहर ही आपने कयाम फरमाया, मदीना में आए नहीं, हालांकि घर बहुत करीब थे और घर जा भी सकते थे, मगर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, तुम रुक जाओ और अपने घरों में तिला भेजवा दो ताकि बीविया, क्योंकि सफर में थे, अब सफर में थे तो समझे पता नहीं कब आएंगे, तो अभी अचानक घर में नहीं जाना है, पहले बाहर ठहरो, उसके बाद उनको खबर दे दो कि हम आ गए हैं, तो भेजवा दो ताकि बीविया अपने आप को खाविंदों के लिए तैयार कर ले। तो नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत से पता चलता है कि औरतों के लिए नबी अलैहिस्सलाम की तालीम है। इसलिए शोहर भी कभी सफर में गया हो, दो दिन, चार दिन, पांच दिन, हफ्ते, दस दिन के लिए, तो जब वापस आ रहा है तो अचानक न पहुंच जाए, उसको इत्तला दी जाए कि फुला गाड़ी से फुला वक्त में घर पहुंच रहा हूं। तो ये सुन्नत है, इत्तला देना, इत्तला देना सुन्नत है। तो देखो सुन्नत में कितनी खूबसूरती है। अब बहुत से लोग कहते हैं मैं अचानक पहुंच जाऊंगा, उसको सरप्राइज दूंगा। ये सरप्राइज जो है ना, ये हमारी आदत नहीं है। अगर सरप्राइज होती तो सबसे पहले अल्लाह के रसूल सरप्राइज देते थे, बोले नहीं नहीं सब अपने घरों में चले जाओ, सरप्राइज मिलेगी सबको। वो सरप्राइज बाज जगह पर होती है और बाज जगह पर ही सरप्राइज नहीं होती है, वरना वो और ज्यादा मुसीबत बन जाएगी बजाय सरप्राइज की। समझ गए। शोहर के लिए रमजान में ईद बना दिया, और हाँ जी, हमने उनको भी बता दिया, आपको भी बता दिया, इसलिए हमने कहा कि दोनों की जिम्मेदारी। मैंने हालांकि जो मुझे बहुत सारी बातें करनी थी मैंने काट दी क्योंकि वक्त कम है, तो शोहरों को भी अपनी अपनी जिम्मेदारी समझा दी है और बीवियों को भी अपनी अपनी जिम्मेदारी समझा दी है, और दोनों अपना काम करेंगे तो घर जन्नत बन जाएगा और हमें बैठकर दुआएं मिलती रहेगी। तो फरमाया नबी इस्लाम की सुन्नत, ये पता चला कि औरतों के लिए नबी इस्लाम की तालीम है। जब औरतों को पता हो कि मियां के आने का वक्त है तो उस वक्त मैले मुंह पर मेकअप करने के बजाय जरा साफ सुथरी होकर रहे ताकि नबी इस्लाम की सुन्नत के ऊपर उनको अमल नसीब हो सके। जब खुद ही साफ सुथरी नहीं रहेगी तो कैसे तवक्कु करती है कि खाविन के दिल में हमारी रोज नई मोहब्बत होनी चाहिए। जब खाविन तवज्जो नहीं करते तो फिर रोती फिरती है। जी जी, सारी दुनिया के हुए मेरे सिवा, जी सारी दुनिया के हुए मेरे सिवा, मैंने दुनिया छोड़ दी जिनके लिए। यानी बीवी जो आती है सारी दुनिया छोड़कर शोहर के लिए आती है, और शोहर फिर दूसरे का बन जाता है तो कैसे चलेगा। जब आपने उनके लिए दुनिया छोड़ दी तो अब अपने आप को जरा साफ सुथरा भी रखिए ताकि मियां का तबअन भी आपकी तरफ मोहब्बत का जज्बा ज्यादा हो जाए। अल्लाह अकबर, वक्त कम है, बातें बहुत है, अभी देखो वक्त पूरा हो गया और छह चीजें आई है, अभी 20 चीजें बताने की है, अभी हो सकता है कल का ही एक दिन मिले। चलो जितनी चीज आई उस पर भी अमल हो जाएगा तो बहुत कुछ काम हो जाएगा। इंशाल्लाह कल कोशिश करते हैं इसको समेटने की कि 20 पूरी हो जाए, तो क्या है एक मुकम्मल चीज सामने आ जाती है और चलने के लिए हमें आसानी हो जाती है। ये बहुत कीमती चीजें हैं और जो माँ बहने सुन रही है उसको ये दोबारा इस बातों को सुने। और दूसरी बेचारे ऐसी जवान लड़कियां हैं जिनको कुछ पता नहीं है, शादियां हो चुकी है, घर कैसे चलाना कैसे रहना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उनको समझाया जाए प्यार मोहब्बत के साथ ताकि उनके घर भी जन्नत बन जाए। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल थोड़ा सा वक्त लेकर आए, अगर 20 को पूरा करना पड़ा थोड़ा वक्त हो जाए तो ध्यान तवज्जो के साथ बैठे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुआ कर اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم। ये अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ये अल्लाह हमारी खताओं से दरगुजर फरमा, लग्ज़िश कुसूरों को नादानियों को माफ़ फरमा, जन्नतुल फिरदौस में दाखला अता फरमा। ये अल्लाह हम तुझसे जन्नत का सवाल करते हैं, जहन्नम से पनाह चाहते हैं। ये अल्लाह اللهم نسألك الجنة وأعوذ بك من النار। ये अल्लाह हम जन्नत का सवाल करते हैं, जहन्नम से पनाह चाहते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह असलुकल जन्नत वाऊजु बिका मिनन नार। ला इलाहा इल्लल्लाह असलुकल जन्नत वाऊजु बिका मिनन नार। ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह असलुकल जन्नत वाऊजु बिका मिनन नार। ये अल्लाह हमारे आइबों की पर्दा पोशी फरमा, ये अल्लाह हमारे आइबों की पर्दा पोशी फरमा, हमारी निगाहों को पाक फरमा, हमारे दिलों को साफ फरमा, हमारे सीनों को अपनी मोहब्बत से लबरेज फरमा। ये अल्लाह हमें सही मानों में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। ये अल्लाह मियां बीवी के दरमियान मोहब्बत वाली जिंदगी अता फरमा। ये अल्लाह जितनी भी बीवियां परेशान हैं ये अल्लाह उनके शौहर को हिदायत दे दीजिए, और ये अल्लाह जितने शोहर परेशान है ये अल्लाह उनकी बीवियों को हिदायत दे दीजिए। ये अल्लाह ये दर्स है उनके दिलों में उतार दीजिए। ये अल्लाह उन दोनों को ये दर्स जो है मोहब्बत के बनने का जरिया बना दीजिए। ये अल्लाह उनके आपस की गलत फहमियों को दूर फरमा दीजिए। ये अल्लाह इनके घरों को जन्नत बना दीजिए। कितनी ऐसी बीवियां है जो रूठ कर अपने मेके चली गई है, और कितने ऐसे शोहर है जो इनको छोड़कर कहीं और चले गए हैं। या अल्लाह ये बिचारी अब परेशान है, ये अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। ये अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। इन लोगों को रास्ता नहीं मिलता, हम क्या करें। ये अल्लाह हम तेरे घर में बैठकर उनके लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह उनके दिलों को नरम फरमा दीजिए, उनको अपना ताल्लुक और मोहब्बत नसीब फरमा दीजिए, और ये अल्लाह उनको एक दूसरे को माफ करने वाला बना दीजिए, और उनको आपस में फिर से जोड़कर एक मोहब्बत भरी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दीजिए। अल्लाह हमारी इन दुआओं को मैज अपने फ़ज़्ल व करम से कबूल फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तवाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर रहीम।